गाड़ी आती है तो सारे के सारे धूल धक्कड़ को दबाती हुई पानी छिड़कती चली जाती है। जब गाड़ी चली जाती है तो सब जगह सड़क ठंडी हो जाती है और तरावट आ जाती है। इस धूल धक्कड़ वाली सड़क पर जब म्यूनिसिपल बोर्ड की पानी से भरी हुई गाड़ी आती है,
कौन सी ओम अपवित्र पवित्रोवा
की जलधारा छिड़कती हुई चली जाती है और धूल को दबाती हुई गलाती हुई चली जाती है और ठंडक देती हुई चली जाती है। जब बरसात होती है तो क्या होता है
बेटे?
हरियाली पैदा होती है। यह जल जो आपने अपनी बाई हथेली पर रखा था उसको हम अपने ऊपर उछालते हैं, छिड़कते हैं। यह करते हुए आप ध्यानमग्न हो जाए कि हमारे ऊपर पवित्रता की वर्षा हो रही है, देवत्व की वर्षा हो रही है, जो हमारे शारीरिक कषायों को और मानसिक कलंशों को धोती हुई चली जा रही है।
बेटे
यही तो है गंगा स्नान। और क्या है, गंगा में पानी है, गंगा और यमुना के पानी में कोई फर्क नहीं है। अच्छा यह बात है तो मुझे आप कहने दीजिए,
अभी पिछले महीने अखबारों में आया था कि इलाहाबाद की त्रिवेणी का जल लेबोरेटरियों में भेजा गया था,
उसमें हजारों कीड़े पाए गए और यह घोषित किया गया कि त्रिवेणी का कच्चा पानी नहीं पीना चाहिए।
जो कच्चा पानी पिएगा वह मरेगा, इसीलिए इसको फिल्टर करके पीना चाहिए और उबालकर पीना चाहिए। गंगाजल से लाभ कब? मित्रों,
गंगाजी के जल का फर्क यह है कि जिस समय हमारी मान्यताएं और हमारी भावनाएं यह मानकर चलती हैं कि इस दिव्य जल में, पवित्र जल में विष्णु का वास है और शिवजी की जटाओं का आधार है,
स्वर्गलोक से अवतरित देवी भागीरथी हमको शुद्ध पवित्र करती चली जा रही है।
वास्तव में यह उतना ही पवित्र है जितना कि गंगाजी हैं। अगर आप यह मान लें कि आपको गंगाजी में मछली मारने का ठेका 51,000 रुपये में मिल जाए तो आप रोजाना गंगाजी में से कितनी मछली पकड़ेंगे? आज कितनी पकड़ी गई?
आज साहब
40 मन पकड़ी गई,
दूसरे दिन 18 मन पकड़ी गई।
और क्या करते हैं
साहब?
गंगाजल में स्नान करते हैं, गंगाजल पीते हैं और मछली पकड़ते हैं। हम तो गंगाजी में जिंदा हैं। अच्छा तो आपको फायदा हो सकता है? मेरे ख्याल से आपको गंगाजल से कोई फायदा नहीं हो सकता, इससे आपको कोई मुक्ति नहीं मिल सकती, अगर पानी का ख्याल है तब। लेकिन अगर आपका ख्याल, आपकी भावना यह है कि गंगा से मुक्ति होगी तो बेटे
आपको वही लाभ होगा जो जगन्नाथ मिश्र को हुआ था, जगन्नाथ मिश्र की गंगा साधना। साथियों,
जगन्नाथ मिश्र के मन में आया था कि हम अपनी माँ की गोदी में प्रवेश करते जाते हैं, दिव्यता की देवी, मातृत्व की देवी की गोदी में हम प्रवेश करते जाते हैं। वे गंगालरी के 52 श्लोकों में से एक एक श्लोक बोलते हुए, एक एक कदम बढ़ाते हुए गंगाजी में चले गए और उसी में प्रवाहित हो गए थे। स्वामी रामतीर्थ भी टिहरी में माँ गंगा की गोदी में लिपटने के लिए व्याकुल हो गए थे। उन्होंने किनारे पर अपने कपड़े रख दिए थे और माँ तेरी गोदी में रहूंगा और तेरे तरीके से बहूंगा, तेरे तरीके से चलूंगा। तेरा उद्देश्य हिमालय से निकलकर बिना किसी की चिंता किए हुए अपनी शुद्धता और पवित्रता से असंख्यों का उत्कर्ष करते हुए समुद्र में समा जाना है।
माँ मैं भी तेरे साथ चलूंगा। रामतीर्थ जी गंगाजी में बह गए थे और जगन्नाथ मिश्र भी बह गए थे। उनका मन किन भावनाओं के साथ उछल रहा था। उन्होंने गाया, समृद्धम सौभाग्यम सकलवसुधाया किम्पीतान महेश्वर्यम लीलाजनित जगत खनपरशो श्रुतिना सर्वस्वम सुकृतमत मूर्तम सुमनसा सुधा सौंदर्य ते सलिलम शिवना शमेतु। इस तरह गाते हुए जगन्नाथ मिश्र भाव विभोर होकर माँ गंगाजी में चले गए। उनका उद्धार हुआ होगा। हाँ बेटे,
मेरा विश्वास है कि जरूर हुआ होगा।
गंगाजी के स्नान का जो फल मिलना चाहिए वह जरूर मिला होगा। उनकी आत्मा शुद्ध और पवित्र जरूर हो गई होगी।
पानी की वजह से नहीं, वरन पानी के साथ साथ उन्होंने जो अपनी दिली भावनाओं का समावेश किया था उसकी वजह से हुआ होगा।
बेटे
पानी में कोई ताकत नहीं है। नहीं साहब, गंगाजल में शक्ति है। नहीं, कोई शक्ति नहीं है। गंगाजल और यमुना जल में क्या फर्क पड़ता है? पानी पानी सब एक से हैं। शक्ति निष्ठा में, विश्वास में है।
मित्रों,
जो कुछ भी शक्ति या सामर्थ्य है कलेवर में, कर्मकांडों में नहीं है, उन निष्ठाओं में है, विश्वासों में है, जो न केवल हमारे शरीर का शोधन करती हैं वरन हमारी जीवात्मा का भी संशोधन करती हैं। न केवल हमारे कर्म का संशोधन करती हैं वरन हमारे विचारों का भी संशोधन करती हैं और हमारी आत्मा की आस्थाओं का संशोधन करती हैं, जैसा कि आप जल में भावना सहित नहाए हैं। फिर मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि कलश में सारे देवताओं का जो हम आह्वान करते हैं वे आते हैं।
कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः,
अर्थात कलश में ब्रह्मा जी बैठे हैं, रुद्र जी बैठे हुए हैं, गणेश जी बैठे हुए हैं, सभी देवता इस पानी में चल रहे हैं, फिर रहे हैं।
इससे आप नहाए तो आपको अवश्य फल मिलेगा।
नहीं साहब, कलश का पानी बहुत कीमती है। नहीं बेटे, कोई कीमती नहीं है, जैसे और पानी है वैसे ही कलश का पानी है। यह सब भावनाओं का खेल है, आप समझते क्यों नहीं है।
नहीं साहब, कर्मकांडों का खेल है।
नहीं बेटे, कर्मकांडों का खेल नहीं है, यह भावनाओं का खेल है। भावनाओं के साथ साथ में अगर आपने पवित्रीकरण किया है कि इससे हमारा व्यक्तित्व और हमारी आस्थाएं शुद्ध और पवित्र बनती चली जा रही हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपने गायत्री उपासना का पहला वाला कृत्य, आत्मशुद्धन का पहला वाला चरण समाप्त कर लिया है और आप उसका उद्देश्य जान गए।
अंतर्जगत का स्नान है आचमन। दूसरा वाला उद्देश्य क्या है?
आचमन है। कितने आचमन करने पड़ते हैं?
3 आचमन करने पड़ते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रियः श्रियता स्वाहा। 3 बार आचमन से तीनों शरीरों को स्नान कराना पड़ता है। एक को स्नान कराने से काम नहीं चलता। गायत्री का जप करने से पहले हमें स्नान करना चाहिए।
आप बीमार हैं और स्नान नहीं किया है तो आप ऐसा कर लीजिए कि भीगा हुआ तौलिया लेकर उससे आप अपना शरीर पोंछ सकते हैं।
धर्म के प्रत्येक कर्मकांड में स्नान आवश्यक है, खासतौर से गायत्री अनुष्ठान में स्नान करके बैठा कीजिए। बिना स्नान के गलती मानी जाएगी।
हम किसका स्नान कराते हैं? 3 का स्नान कराते हैं जो हमारे भीतर निवास करते हैं। कौन कौन निवास करता है?
शरीर नहीं, चमड़ी नहीं।
चमड़ी को ही तो आप स्नान करा देते हैं, इससे कोई काम नहीं बनने वाला है।
चमड़ी को स्नान करा लिया, नहा लिए।
नहीं बेटे, यह नहाना काफी नहीं है,
इससे आध्यात्मिकता की आवश्यकता पूरी नहीं हुई। बेटे,
तूने पेट में स्नान करा लिया?
नहीं महाराज जी, पेट में तो मल भरा हुआ है, पेशाब भरा हुआ है।
अच्छा, तो तू उसको नहीं निकाल सकता है, पर यह बता दे कि जो रामनाम के गान करेगा, गायत्री मंत्र बोलेगा, वह किससे बोलेगा?
साहब, जीभ से बोलूंगा। जीभ किसकी है?
चमड़े की है।
अच्छा, इसमें मांस तो नहीं है?
हाँ पंडित जी,
मांस तो है ही।
थूक तो नहीं है?
हाँ है। तो इस जीभ को काट दे और फिर प्लास्टिक की जीभ लगा ले।
अच्छा महाराज जी, प्लास्टिक की?
हाँ बेटे।
भजन तो तभी हो सकता है, गंदी जीभ से क्या भजन हो सकता है?
इसको स्नान करा, कुल्ला कर ले।
हाँ बेटे,
कुल्ला कर ले।
इससे इसमें जितना भी मांस है, चमड़ा है, सब निकलकर अलग हो जाएगा और खालिश जीभ रह जाएगी।
महाराज जी,
ऐसे कैसे हो सकता है? यह जीभ तो चमड़े की ही रहेगी।
किनका स्नान कराएं? बेटे,
फिर एक काम कर, तेरे मुंह में यह जो सफेद सफेद भाग दिखाई दे रहा है, यह क्या है?
ये हड्डियां हैं।
अरे राम राम,
हड्डी से गायत्री मंत्र? अरे बेटे,
यह तो रुद्राक्ष से जपा जाता है, हड्डी से नहीं। इन्हें उखाड़ दे, डॉक्टर के पास जाना और यह कहना कि साहब हमारे दांत उखाड़ दीजिए।
फिर क्या कहूँ?
फिर कहना कि साहब इसकी जगह प्लास्टिक के दांत लगा दीजिए, नीचे से ऊपर तक प्लास्टिक के दांत लगवा ले। और जीभ को?
जीभ के लिए कोई ऐसा उपाय कर कि यह जीभ तो खराब है,
इससे तो जप नहीं हो सकता, गायत्री माता अशुद्ध हो जाएंगी।
महाराज जी,
फिर किसकी जीभ लाऊं?
प्लास्टिक की।
अच्छा गुरु जी, प्लास्टिक की जीभ और दांत लगा लूंगा तो फिर मैं मंत्र कैसे बोलूंगा? देख ले बेटे,
यह तेरी मर्जी की बात है, स्नान करना चाहता हो तो इससे कम में नहीं हो सकता, चमड़ी के स्नान से कुछ काम बन सकता है।
नहीं,
वास्तव में स्नान उनको कराना चाहिए जो गंदे हैं। शरीर तो गंदा है ही, यह शुरू से आखिर तक गंदा है।
यह तो बाहर बाहर ही अच्छा दिखता है।
बगल को सुगिए।
अरे महाराज,
इससे बड़ी बदबू आती है।
बेटे, यह बदबू का घर तो है ही,
इसको स्नान कराने से कुछ काम बन सकता है।
हाँ बेटे,
इसको स्नान तो कराना चाहिए, इसका खंडन मैं नहीं करता, पर मैं यह कहता हूँ कि जिनका स्नान कराना आवश्यक है वे धाराएं 3 हैं। बाहर की चमड़ी को न देखें।
महाराज जी,
वे कौन कौन सी 3 धाराएं हैं?
बेटे,
ये 3 धाराएं वो हैं जो हमारी चेतना से ताल्लुक रखती हैं। इनमें से एक हमारे कर्म से संबंध रखती है, एक हमारे विचार से और एक हमारे भाव से संबंध रखती है।
हमारे 3 शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। स्थूल शरीर का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वे हैं हमारे कर्म। इसकी शक्ल या बनावट पर मत जाइए। एक बार अष्टावक्र राजा जनक की सभा में गए। उनके हाथ पांव टूटे हुए थे, वे झुककर चल रहे थे,
कुबड़ निकला हुआ था।
उन्हें देखकर राजा के सभी सभासद हंसने लगे।
उन्होंने राजा के सभासदों से और राजा से कहा, क्यों रे राजा, तैने अपनी सभा में सारे के सारे चमार भरती करके रखे हैं। ये चमार थोड़े ही हैं,
ये तो ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिए हैं।
नहीं, सबके सब चमार हैं।
क्यों,
चमार कैसे हुए?
चमार ऐसे हुए कि ये सिर्फ चमड़े को देख पाते हैं।
चमड़े को जो देख पाता है, चमड़े का जो व्यापार करता है, चमड़े का जो धंधा करता है, उसका नाम चमार होना चाहिए। तूने हमारे ज्ञान को क्यों नहीं देखा, जो देखने लायक है? चमड़े को क्यों देखता है?
शरीर का मूल्यांकन आध्यात्मिक आधार पर। मित्रों,
यह जो हमारा शरीर है, इसका बाहरी चमड़ा अष्टावक्र के तरीके से है।
अष्टावक्र का चमड़ा टूटा हुआ था।
हमारा मांस से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, चमड़ी से भरा हुआ है और मल से भरा हुआ है। इस चमड़ी में है क्या? असल में इस चमड़े का जो अध्यात्म है, स्थूल शरीर का जो अध्यात्म है, उसका नाम है कर्म। आप कुरूप हैं या खूबसूरत हैं, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। आपकी चमड़ी गोरी होने से या काली होने से कुछ नहीं होता। हमें निर्णय करने दीजिए कि आपके कर्म क्या हैं। कर्म की वजह से हम आपके स्थूल शरीर के बारे में यह फैसला करेंगे कि आपका स्तर क्या है और आपकी वक़्त क्या है, आपकी औकात क्या है। स्थूल शरीर का वजन और वक़्त जो ली जाती है, वह उसके कर्मों के आधार पर ली जा सकती है। उसकी वक़्त को शक्ल के आधार पर नहीं, सूरत के आधार पर नहीं, जवानी के आधार पर नहीं और रंग रूप के आधार पर नहीं, बालों के आधार पर नहीं, किसी आधार पर नहीं आंका जा सकता। असल में अगर शरीर का मूल्यांकन करना है तो अध्यात्म के आधार पर करना है। स्थूल शरीर का मूल्यांकन कर्म के आधार पर किया जा सकता है।
इसलिए कर्म की सफाई कीजिए, विचार हमारे सही हों। मित्रों,
कर्म की सफाई के लिए आचमन नंबर एक और विचारों की सफाई के लिए आचमन नंबर दो। कौन आदमी बी शून्य ए शून्य पड़ा है, कौन एम शून्य ए शून्य पड़ा है, बेटे इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आध्यात्मिकता के हिसाब से हम किसी आदमी को यह महत्व देने को तैयार नहीं है कि आपने बी शून्य ए शून्य पास किया है, एम शून्य ए शून्य पास किया है,
बेटे
इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपका एम शून्य ए शून्य पास करना और बिना पढ़ा होना हमारे आध्यात्मिकता के इम्तिहान में एक समान है।
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, और पंडित मूर्ख एक समान। आध्यात्मिकता की दृष्टि से पंडित और मूर्ख तब तक एक समान है जब तक कि आदमी के विचार करने का तरीका, सोचने का तरीका उत्कृष्ट व आदर्शवादी नहीं हो जाता। भावनाओं का स्नान। मित्रों, हमको अपनी विचारणाओं का अर्थात सूक्ष्म शरीर का परिशोधन करना चाहिए।
हमारे तीन शरीर हैं, परंतु तीनों शरीर ऐसे नहीं हैं कि एक घोड़े का शरीर, एक कुत्ते का शरीर और एक बंदर का शरीर है। ऐसा नहीं है, तीन शरीर हमारे भीतर हैं।
एक सूक्ष्म शरीर हमारे भीतर है, यह दूसरे नंबर का है, जिसका स्वरूप है विचार और चिंतन। विचारों की सफाई, विचारों का स्नान, कर्म का स्नान और भावों का स्नान।
भावनाएं, श्रद्धा, निष्ठाएं, आस्थाएं, विश्वास, रुचियां, ये सारी की सारी चीजें भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, संवेदनाओं से जुड़ी हुई हैं।
भावनाओं और संवेदनाओं का स्नान एक, विचारणाओं का स्नान दो, क्रियाओं का स्नान तीन।
इन तीनों की सफाई करने के लिए हम ध्यान देते हैं और यह विश्वास करते हैं कि हमको इन तीनों को साफ करना पड़ेगा।
हम इन तीनों को स्वच्छ बनाकर चलेंगे।
ये दो बातें हमने आपको बता दी, एक पवित्रीकरण की बात और दूसरी आचमन की बात।
क्रमशः समापन किस्त इस प्रवचन श्रृंखला में पूज्य गुरुदेव आत्मशोधन को हर आध्यात्मिक पुरुषार्थ की धुरी बताते हैं।
वे कहते हैं कि हम सबके भीतर कषाय कंशों के रूप में जहर भरा पड़ा है, उसकी सफाई की जरूरत है।
यदि यह हट जाए तो अध्यात्म के लाभ अवश्य मिलेंगे। लोग उपकरणों को, माला, पूजा के सामान आदि को ही सब कुछ मान बैठते हैं। दोष दुर्गुण हटाए बिना भगवान के वरदान कैसे मिलेंगे?
वे अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने स्वयं को गुरु के आदेश से दुनिया की तरह धुना है। पवित्रता का जब हम आह्वान करते हैं तो हम पर देवत्व की वर्षा होती है। आचमन जब हम करते हैं तो तीनों शरीरों को स्नान कराते हैं।
हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण। आचमन द्वारा हम भाव संवेदना का स्नान सभी को कराते हैं। अब पढ़ें यह समापन किस्त।
अंकुश की तरह है शिखा।
मित्रों,
अभी आपको पंचकोश की बात बता रहे थे।
उसके प्रारंभिक चरण शतकर्मों के अंतर्गत पवित्रीकरण और आचमन की बात हो गई। अगर आप इन्हें भावनात्मक दृष्टि से करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। आचमन के बाद आता है शिखावंदन।
शिखा क्या है? शिखा के पीछे तीन चीजें छिपी पड़ी हैं।
हिंदू समाज में शिखा की शिक्षाएं तीन बताई जाती हैं। इसके पीछे तीन कारण हैं, तीन उद्देश्य हैं।
शिखा का एक उद्देश्य है, जिस तरह हाथी के कंधे के ऊपर कान के पास अंकुश लगा दिया जाता है, अगर यह अंकुश न हो तो वह कितना खूंखार हो सकता है और कितना भयंकर काम कर सकता है। वह पेड़ों को उखाड़ सकता है, बच्चों को कुचल सकता है, वह कहीं भी जा सकता है और किसी की भी फसल उजाड़ सकता है। बिना अंकुश का हाथी पेड़ को भी तोड़ सकता है और किसी भी दिशा में जा सकता है। हाथी के सिर पर अंकुश होता है तो उसे सही राह पर चलना पड़ता है।
हम अपने सिर पर भगवान का, आदर्शवादिता का, आध्यात्मिकता का अंकुश स्थापित कर दें, जो कि हमारे सिर का सबसे ऊंचा वाला भाग है, तो वह हमको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमको बिना अंकुश के निरंकुश नहीं होना है।
हमको उच्छृंखल नहीं होना है, मर्यादा रहित नहीं होना है, अनुशासन रहित नहीं होना है। इसलिए हमारे सिर पर अंकुश लगा हुआ है।
यह हुआ शिखा का उद्देश्य नंबर एक, एक झंडे के समान। मित्रों, शिखा का उद्देश्य नंबर दो यह है कि यह हमारा किला है, यह हमारा दिल्ली का लाल किला है।
दिल्ली के लाल किले के ऊपर हमने झंडा फहरा दिया है। जिस दिन हिंदुस्तान को स्वराज मिला था, उस दिन लाल किले के ऊपर, पार्लियामेंट भवन के ऊपर, राष्ट्रपति भवन के ऊपर और दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर तिरंगा फहरा दिया गया था और यूनियन जैक उतार लिया गया था।
उसी दिन अंग्रेजी सरकार की हुकूमत चली गई थी और कांग्रेस सरकार की हुकूमत कायम हो गई थी। तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज सब जगह फहरा दिया गया। बेटे, हमने सबसे ऊंचे स्थान पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया है। विवेकशीलता का झंडा, आदर्शवादिता का झंडा, सिद्धांतवादिता का झंडा, राष्ट्रीयता का झंडा हम अपने सिर के सर्वोच्च शिखर पर फहराते हैं। निरंकुशता का नहीं, पशुता का नहीं, यूनियन जैक का नहीं, वरन आदर्शवादिता का झंडा हमारे किले के ऊपर फहरा रहा है।
अब हमारे दिमाग के ऊपर किसकी हुकूमत है? अब हमारे जीवन के ऊपर किसकी हुकूमत है?
अब हमारे ऊपर गायत्री माता की हुकूमत है, विवेकशीलता की हुकूमत है, आदर्शवादिता की हुकूमत है। विवेकशीलता की देवी गायत्री माता, धियो न प्रचोदयात की देवी, सहकारिता की देवी, न माने हम सब, धियो माने बुद्धि, प्रज्ञा की देवी गायत्री माता का झंडा अब हमारे ऊपर फहराता है।
अब हमारे शरीर के ऊपर, दिमाग के ऊपर उसी की हुकूमत है। उसी की हुकूमत के मुताबिक हमारी अक्ल काम करती है। अब उसी की हुकूमत के मुताबिक हमारी इच्छाएं काम करेंगी, हमारी क्रियाएं काम करेंगी।
सारी मिनिस्ट्री उसी की हुकूमत मानेगी। हमारे शरीर की जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं, उन सबको उसी का हुक्म मानना पड़ेगा।
इस झंडे के लिए वफादार होना पड़ेगा। यह विवेकशीलता का झंडा है, गायत्री माता का झंडा है, जो हमारे मस्तिष्क पर फहरा दिया गया है।
गायत्री की मूर्ति, उनका स्थान। मित्रों, शिखावंदन क्या है?
इसके पीछे एक और बात छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है?
इसके पीछे भगवान की मूर्ति छिपी हुई है।
शंकर जी की जब मूर्ति स्थापित की जाती है तो उसमें यह विशेषता है कि आपको मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक चबूतरा बनाएं और चबूतरे के ऊपर एक गोल मटोल पिन स्थापित कर दीजिए और खुले में पड़े रहने दीजिए।
वर्षा होगी। हाँ साहब, शंकर भगवान जी को कोई ऐतराज नहीं। धूप पड़ेगी
तो भी भगवान जी को कोई ऐतराज नहीं है। वे धूप में पड़े रह सकते हैं, छाया में पड़े रह सकते हैं, वर्षा में पड़े रह सकते हैं, ठंडक में पड़े रह सकते हैं।
आप चबूतरे पर शंकर भगवान को स्थापित कर दें।
बस शंकर भगवान जी की पूजा हो गई और शंकर भगवान जी का मंदिर बन गया। हर जगह ऐसे मंदिर बनाए जा सकते हैं और उसे बनाने में कोई ऐतराज नहीं।
बेटे,
यह क्या है?
साहब,
यह चबूतरा है। किसका चबूतरा है? पिताजी का बना रखा है। कहाँ बना रखा है? खुले में बना रखा है। छाया में क्यों नहीं बनाया? अरे साहब, एक बार हमारे पिताजी सपने में दिखाई पड़े थे और उन्होंने कहा था कि हमारा स्थान बना दे। बस हम गए थे और एक छोटी सी चबूतरी बनाकर उस पर उनके चरणों के निशान बनाकर आ गए थे। अब हर साल हम वहीं पर जाते हैं और पूजा कर देते हैं और इसी से वो जो उनका भूत था चला गया।
बेटा,
अब हमको शांति मिल गई है।
अब हम ठीक हैं। मंदिर जैसा पवित्र हो अंतस। साथियों,
किसका स्थान बना दिया गया है?
गायत्री माता का। यह गायत्री माता का चबूतरा है।
अच्छा साहब, इस चबूतरे पर किसकी मूर्ति रख लूँ?
बेटे,
तुझे क्या बताऊँ, किसी की रख ले, भले से लोहे की रख ले।
महाराज जी, मैं तो रात को सोऊंगा तो यह मेरे ऊपर गिर पड़ेगी। हाँ बेटे,
लोहे की होगी तो गिर पड़ेगी। किसकी रखेगा इस पर?
महाराज जी,
पत्थर की रख लूँ? नहीं बेटे,
अगर टोपी पहनेगा तो दिक्कत आएगी, तो किसकी रखूँ?
चल, मैं तुझे ऐसी चीज बता देता हूँ जो कि मूर्ति भी बने रहे, गिरे भी नहीं और तुझे रखवाली भी नहीं करनी पड़े और बनी बनाए रखी भी रहे।
तो गुरुजी, किसकी मूर्ति बना दूँ? बेटे,
तू बालों की गायत्री की मूर्ति बना दे। बस यह बालों की शिखा रूप में जो गायत्री माता की मूर्ति है उस स्थान पर स्थापित हो गई।
अब यह भगवान का स्थान हो गया और यह सारा का सारा शरीर मंदिर हो गया और इसमें गायत्री माता की मूर्ति स्थापित हो गई।
इसको मंदिर के तरीके से पवित्र और दिव्य रहना चाहिए।
इसके अंदर जो वातावरण बनना चाहिए, मंदिर जैसा बनना चाहिए।
मंदिर में अनाचार नहीं किए जाते।
सतत यही भाव।
मंदिर में कोई शेर चीता आता है। मंदिर में कोई सिगरेट पीता है। मंदिर में कोई सिगरेट मत पीना।
साहब,
हमको सिगरेट पीने की आदत है। आदत है तो बेटे, मंदिर के बाहर पीना। ऐसा भी क्या गंदा लड़का है जो मंदिर में भगवान जी के ऊपर धुआं फेंक देता है।
वहां मत पीना ठाकुर जी के सामने, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। अच्छा गुरु जी, वहां नहीं पीऊंगा।
यह क्या है?
यह बेटे
मंदिर है। मंदिर में धुआं मत फूंकना, गंदे काम मत करना, बुराई मत पैदा करना। हर समय यह मानकर चलना कि यह मंदिर है। मंदिर की भावना लेकर के चलेगा तो यह भावना तेरे मन में 24 घंटे छाई हुई रह सकती है, और जब भी तू बुरे काम करने के लिए चलेगा तभी यह मंदिर तुझे याद दिलाता रह सकता है कि अरे अभागे, यह मंदिर है, इसे क्यों खराब करता है।
शिखा पूजन इसीलिए। मित्रों,
यह अंकुश आपको याद दिला सकता है कि अच्छा, तू गलत रास्ते पर जाएगा तो पिटेगा। हाथी ने गलत काम किया तो महावत ने उसे एक अंकुश चुभो दिया और हाथी सही रास्ते पर चलने लगा। आपके सिर पर यह गायत्री माता का अंकुश लगा हुआ है और यह झंडा फहरा रहा है।
झंडे की लाज, झंडे की शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। इसलिए मित्रों, इसकी शान मत जाने देना।
इस किले पर झंडा फहरा रहा है। यह शान और यह आदर्शवादिता आपके भीतर बनी रहे और आप इसका ध्यान बनाए रखें। इसको आप बार बार भूल जाते हैं,
इसलिए आपको शिखावंदन, शिखा पूजन हम पहले कराते हैं। इन भावनाओं की कीमत समझिए, इन भावनाओं की वक़्त को समझिए, इन भावनाओं की इज्जत को समझिए।
अगर आप इन भावनाओं की इज्जत को नहीं समझेंगे तो मैं कहूंगा कि आप अध्यात्म को ही नहीं समझते।
कर्मकांड मात्र सिंबल।
अगर आप कर्मकांडों को ही अध्यात्म मानते हैं तो गलती करते हैं।
कर्मकांड अध्यात्म नहीं हो सकते।
कर्मकांड आध्यात्मिकता की राह पर चलने के लिए हमारे लिए सिंबल हो सकते हैं, हमारे सहायक हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, हमारे आधार हो सकते हैं।
ये कर्मकांड हमारे लिए मीडियम हो सकते हैं, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, साधन है।
कर्मकांड साध्य नहीं है, साधन है।
साध्य है हमारी जीवात्मा का दिव्यत्व और देवत्व। जीवात्मा को दिव्यत्व और देवत्व प्राप्त करने के लिए हमारे कर्मकांड मददगार हों तो अच्छा है, उन्हें होना चाहिए।
इन सारी की सारी चीजों को हमने इसीलिए बनाकर रखा है।
अच्छाई को खींचिए प्राणायाम द्वारा। मित्रों,
इसके बाद चौथे नंबर की क्रिया जो आपको हम बताते और सिखाते रहते हैं शतकर्म के अंतर्गत, वह है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या बात होती है? प्राणायाम में दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक हम सांस को अंदर खींचते हैं और दूसरी बाहर फेंकते रहते हैं, एक और सांस निकालते रहते हैं। यह क्या कर रहे हैं साहब?
बेटे,
हम रेचक प्राणायाम कर रहे हैं और यह दूसरा पूरक प्राणायाम कर रहे हैं। यह क्या है? सांस खींचने की प्रक्रिया और बाहर निकालने की प्रक्रिया है।
सांस खींचने की प्रक्रिया और फेंकने की प्रक्रिया का हमको बराबर ध्यान रखना चाहिए। कल मैं आपको वृक्षों का हवाला दे रहा था, आप लोग भूले नहीं होंगे।
वृक्ष अपने मैग्नेट के द्वारा पानी को खींचते रहते हैं, बादलों को खींचते रहते हैं। कल मैं आपको खदानों का भी उदाहरण दे रहा था। खदानें भी अपनी बिरादरी के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर चारों ओर से खींचती रहती हैं और वे खदानें बड़ी होती रहती हैं। आपको भी चारों ओर से खींचना चाहिए, चारों ओर से संकलन करना चाहिए। इस दुनिया में भलाई भी है कि नहीं?
हाँ साहब है। अच्छे विचार भी हैं। हाँ साहब हैं।
अच्छे लोग भी हैं।
हाँ साहब हैं।
दुनिया अच्छे विचारों से, अच्छे लोगों से और अच्छी क्रियाओं से खाली नहीं है।
प्राणायाम का अर्थ यह है कि आप खींचिए, जो भी श्रेष्ठता है उसको समझिए, देखिए, ग्रहण कीजिए, अंगीकार कीजिए और अपने भीतर भरने की कोशिश कीजिए। क्षुद्रताएं छोड़िए। मित्रों,
यह प्राणायाम का वह पहलू है जिसको हम पूरक कहते हैं, रेचक कहते हैं। रेचक का अर्थ है कि जो चीजें हमको हैरान करती हैं, जो चीजें हमको आंतरिक कमजोरियों के रूप में परेशान करती हैं, उनको आप हटाए और उनको आप फेंकिए।
भगवान के प्रशिक्षण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे अर्जुन, अपने हृदय की दुर्बलताओं को, चारित्रिक कमजोरियों को, भावनात्मक निकृष्टताओं को छोड़ और ऊपर उठ। इससे पहले नहीं उठ सकता।
भगवान के दर्शन की आस।
मित्रों, मुझे प्राणायाम के सिलसिले में एक कहानी याद आ गई। एक था चोर।
वह एक बाबाजी के पास जाया करता था और बाबाजी से यह पूछा करता था कि स्वामी जी, आपने भगवान को देखा है?
हाँ साहब,
हमने देखा है।
अच्छा, तो आप फिर हमको दिखाइए। बस पहले तो बाबाजी शेखी मारते रहे, लेकिन जब उसने कहा कि हमको दिखाइए तो फिर बाबाजी की हवा बिगड़ी।
उन्होंने कहा कि हम नहीं दिखा सकते। तो फिर समझ लीजिए कि आपके कमंडलू की खैर नहीं है, आपकी कुटिया की खैर नहीं है, आपके कंबल की खैर नहीं है, आपकी चप्पलों की खैर नहीं है, आपकी खड़ाओं की खैर नहीं है। मैं आपकी सब चीजें गायब कर दूंगा और आपको तंग करूंगा, और जब भी मौका मिल जाएगा आपकी पिटाई करूंगा।
आप समझ लीजिए,
या तो भगवान का हमें दर्शन करा दीजिए, नहीं तो फिर आपका ठिकाना नहीं है। यूं कराए दर्शन।
महाराज जी ने सोचा कि क्या करना चाहिए, यह तो बहुत बड़ी आफत आ गई। बाबा जी समझदार थे, उन्होंने कहा कि बेटे,
यह जो दूर पर पहाड़ दिखाई देता है ना?
हाँ महाराज जी। बेटे,
उस पहाड़ की चोटी पर भगवान दिखाई पड़ेगा।
चलिए, मैं तो तैयार हूँ। चोर तैयार हो गया।
क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा कि अच्छा तो बेटा, तू ऐसा कर कि चार भारी भारी पत्थर ले और उन्हें सिर पर रख कर चल।
कहाँ चलूँ महाराज जी?
उस पहाड़ की चोटी पर चल, वहाँ से मैं तुझे भगवान जी को दिखा दूंगा। ये जो चार पत्थर हैं, तुझे उनकी सेवा पूजा करनी पड़ेगी और वहाँ भजन पूजन करना पड़ेगा।
तब ये जो चार पत्थर हैं, वे तुझे भगवान दिखा देंगे। अच्छा महाराज जी, चलिए।
चार पत्थर सिर पर रख करके चोर थोड़ी दूर गया। फिर उसने कहा कि महाराज जी, ये तो बड़ा कष्ट देते हैं,
इनसे तो हमारी गर्दन टूट गई।
तब महाराज जी ने कहा कि बेटे, इनमें से एक पत्थर फेंक दे।
उसने एक पत्थर फेंक दिया। तरीका भगवान को पाने का। फिर और आगे चला चोर।
उसने कहा कि महाराज जी,
एक पत्थर फेंक दिया, फिर भी देखिए हमारी गर्दन में दर्द होने लगा।
ये तीनों पत्थर भी कितने भारी हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ते।
ठीक है बेटे, एक पत्थर और फेंक दे।
उसने एक और फेंक दिया।
दो और रह गए।
उसने कहा कि महाराज जी, एक को और फिंकवा दे। अच्छा तो एक और फेंक दे।
एक और फिंकवा दिया। महाराज जी, अब तो थक गया,
अब और नहीं चला जाता और हम तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, चोटी तक नहीं पहुँच सकते।
बेटे,
तूने अभी भी सिर पर पत्थर रख रखा है।
हाँ महाराज जी।
आपने यह जाल जंजाल काहे को लदवा दिए हैं?
ये हमको चलने नहीं देते। बेटे, इसको भी गिरा दे। चौथा पत्थर भी गिरा दिया। चारों पत्थर गिराने के बाद में बाबा जी और वह चोर खटखट वहाँ पहुँच गए।
चोर ने कहा कि साहब,
अब दिखाइए भगवान। बेटे, तेरे लिए भगवान तक पहुँचने का तरीका बता तो दिया, तेरे लिए शिक्षा दे तो दी।
तेरे सिर पर जब तक पत्थर रखे हुए थे, तब तक तू चोटी तक नहीं पहुँच सका और थक गया, गिर गया और बैठ गया।
आपने अपने आध्यात्मिक जीवन पर जो पत्थर रखे हुए हैं, उनको गिरा दीजिए। उनको गिरा देंगे तो ही भगवान तक पहुँच सकते हैं,
भगवान को पा सकते हैं।
चार पत्थर हमारे सिर पर। मित्रों,
कौन कौन से ये चार पत्थर हैं जो आपके सिर पर सवार हैं? ये चारों हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह।
इन्हें गिरा दें, फिर भगवान को देखें। बेटे,
प्राणायाम के द्वारा हम अपनी मलिनताएं, अपने कषाय और कलमश, अपने पाप और ताप को फेंकने के लिए कोशिश करते हैं और जो श्रेष्ठताएं हैं उनको अपने भीतर धारण करने की कोशिश करते हैं।
प्राणायाम का यही उद्देश्य है, यह आध्यात्मिक उद्देश्य है।
क्रिया तो आपको मालूम है।
भीतर सांस खींचिए, दूसरी ओर से सांस बाहर निकालिए, फिर बाहर रोकिए।
यही बताते हैं ना?
हाँ महाराज जी।
यह तो बड़ी सरल विधि है, हमको एक सेकंड में आ गई थी।
बेटे,
यह एक सेकंड में सरल तो है, लेकिन सहज राम को नाम है, कठिन राम को काम।
करत राम को काम जप, परत राम से काम।
राम का काम तो नहीं महाराज जी, पर राम का नाम लूंगा। राम का नाम लेने से कोई फायदा नहीं, फर्क नहीं, राम का काम करने में फर्क है।
बेटे,
राम का काम करने में बड़ा फायदा है। प्राणायाम करने के पीछे जो निष्ठाएं दबी पड़ी हैं, छिपी पड़ी हैं, उनको आपको जानना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए।
न्यास किस लिए? मित्रों, प्राणायाम के पश्चात फिर आप न्यास पर आते हैं।
न्यास किसे कहते हैं?
बेटे,
न्यास को यह समझ ले कि जैसे छुरे पर धार रखी जाती है और उसे तेज किया जाता है, उसी तरह यह धार रखी जाती है, इसे न्यास कहते हैं। न्यास में पानी हथेली पर रखा और उसमें पांचों उंगलियां डुबोई और मुंह पर लगा दिया, नाक पर लगा दिया और कान पर लगा दिया। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको वास्तव में हम शिक्षण देते हैं, इनको सिखाते हैं, इनको परिष्कृत करते हैं, इनको डुबकी लगवाते हैं कि आपको क्या करना है।
वांग में मुंह को लगाइए।
अच्छा साहब, मुंह को लगा लिया।
जल को मुंह से लगाने का क्या मतलब है?
सीधे जाकर कुल्ला कीजिए ना, ऐसा कर कि बाल्टी भरकर पानी ला और सारे शरीर को धो डाल।
नहीं साहब,
मुंह धोना है
तो कुल्ला कर, यह क्या करता है? हथेली पर जरा सा पानी और उसमें पांचों उंगलियां, इससे क्या हो जाएगा?
इससे तो ओष्ठ भी नहीं साफ होंगे।
इससे तो अच्छा है कि ओष्ठ पर क्रीम लगा ले, वैसलीन लगा ले। नहीं महाराज जी, यह तो पानी है, इससे क्या हो जाएगा?
बेटे,
इसके भीतर गुप्त चीजें हैं। मुंह से हम दो बार पानी लगवाते हैं, मुंह के भीतर शक्तियों के स्रोत भरे पड़े हैं।
जीभ तो एक है, लेकिन यह सांपिन है।
सांप के तरीके से इस जिह्वा को दो इंद्रिय माना गया है।
जिह्वा एक कर्मेंद्रिय है और एक ज्ञानेंद्रिय है।
इसे हम दो इंद्रियों में गिनते हैं,
रसना और वाणी पर नियंत्रण।
हमारी जिह्वा एक रसना है और एक वाणी है।
रसना को नियंत्रित कीजिए और आस्वाद व्रत रखिए।
वे चीजें जो जायके के लिए खाई जाती हैं और पेट खराब करती हैं, उनको रोकिए।
जीभ पर काबू रखिए।
जो व्यक्ति आस्वाद व्रत का पालन कर सकता है और जीभ पर संयम रख सकता है, वही कामेंद्रियों पर संयम रख सकता है और उसके लिए ब्रह्मचर्य रखना संभव हो सकता है। जिसका जीभ पर नियंत्रण नहीं है, वह आदमी कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता और उसका विचारों पर नियंत्रण भी नहीं हो सकता।
गांधी जी ने आस्वाद व्रत को प्रमुख माना है। सबसे पहले जीभ को रोकिए, जीभ पर कंट्रोल कीजिए।
जीभ के द्वारा अपने मरने के लिए कब्र मत खोदिए। हकीम लुकमान कहते थे कि आदमी दफन होने के लिए अपनी जीभ से अपनी कब्र खोदता है।
बेटे,
हमने जायके की वजह से और अनावश्यक चीजों की वजह से और न खाने वाली चीजों को खाने की वजह से अपने पेट का सत्यानाश कर लिया,
अपनी सेहत को खराब कर लिया। अगर आपको सेहत ठीक रखनी है, मानसिक स्तर ठीक रखना है, तो आप संयम कीजिए। वान में आस्यस्तु, मुख के ऊपर काबू पाइए।
अह पर नियंत्रण करें, कड़वे वचन न बोलें।
मित्रों,
मुख के अंदर एक और चीज रहती है जिसका नाम है वाणी, जिसको वाक कहते हैं, सरस्वती कहते हैं। सरस्वती इसके भीतर रहती हैं।
कौवा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे वचन सुनाए के जग अपनो कर लेत। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर।
आपकी वाणी हर वक्त बिच्छू के दंत के तरीके से अपने अहंकार का विज्ञापन करती रहती है और दूसरों का असम्मान करती रहती है।
साहब,
आप कड़ुए वचन बोलते हैं तो हमको बड़ा गुस्सा आता है। हाँ, बड़ा गुस्सा आता है, घमंडी कहीं का। जो आदमी दूसरों को छोटा समझता है, वही कड़ुए वचन बोल सकता है। जो आदमी घमंड से भरा हुआ है, वही कड़ुए वचन बोल सकता है।
मित्रों,
हम तो सही बात कहते हैं, इसलिए गुस्सा आ जाता है और कड़ुए वचन कहते हैं।
बेटे,
सत्य का कड़ुएपन से कोई ताल्लुक नहीं। कड़ुएपन का जो ताल्लुक है, वह आदमी के अहंकार से है। आदमी घमंड से चूर होकर के रावण के तरीके से चाहे जो बोलने लगता है, चाहे जो करने लगता है और सामने वाले व्यक्ति का सम्मान जब गिरा देता है, पटक देता है, तब कड़ुए वचन बोलने लगता है।
आप सामने वाले की इज्जत कीजिए। अगर सामने वाले से शिकायत है तो उसे प्यार से समझाइए।
जिनकी शिकायत आप दूर करना चाहते हैं, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। अपने दिमाग का संतुलन रख करके मोहब्बत के साथ उन्हें बुरी से बुरी बात समझाई जा सकती है।
वान में आस्यस्तु, इसीलिए। मित्रों,
12 घंटे का बुखार और आधे घंटे का क्रोध, दोनों से समान नुकसान होता है।
आप सभी करके देख लेना।
जलाने वाला वह वचन जिसको हम क्रोध कहते हैं, जिसको हम मिथ्या भाषण कह सकते हैं, गलत सलाह कह सकते हैं।
इस तरह गलत सलाह 1, कड़ुए वचन 2, असत्य भाषण 3, बुरी चीजें खाना, अभक्ष्य खाना 4, ये वाणी के असंयम हैं।
अगर आप जीभ पर संयम रख सके तो मित्रों, आपको आध्यात्मिकता के वे लाभ मिल सकते हैं जिनसे आपको शाप देने और वरदान देने की शक्ति मिल सकती है। अगर आप वान में आस्यस्तु, मुख का संयम करना सीखें, मुख के ऊपर धार लगाना सीखें। अभी यह जीभ भोंथरी हो गई है, इस पर आप धार लगाए ताकि यह पैनी तलवार के तरीके से काम कर सके।
नहीं साहब,
हम तो मुख में पानी लगाएंगे।
बेटे,
पानी लगाने से कोई फायदा नहीं है।
लगा ले तो तेरी मर्जी, नहीं लगाए तो तेरी मर्जी। स्वाभिमानी बने। मित्रों, वान में आस्यस्तु के बाद आता है निसोर में प्राणोस्तु।
नाक से क्या होता है?
गंध लेना, सूंघना, पता लगाना।
कुत्ते सूंघकर पता लगाते हैं चोरी का माल कहाँ गया। C0I0D0 के कुत्ते आते हैं और सूंघकर पता लगा लेते हैं कहाँ गया माल। उनकी नाक कुछ ऐसी तेज बनाई गई है जैसे गणेश जी की थी।
गणेश जी की नाक बड़ी लंबी थी, सब कुछ पता लगा लेती थी।
क्या चक्कर है?
वह सूंघकर सब पता लगा लेते थे।
खोज करने के अर्थ में सूंघना आता है, यह गंध के अर्थ में नहीं आता।
निसोर में प्राणोस्तु अर्थात नाक में पानी लगाते हैं। अरे, तेरी नाक कट जाएगी।
अरे साहब, हमारी नाक बहुत बड़ी है। नाक को प्रेस्टीज पॉइंट, इज्जत, आबरू और स्वाभिमान से जोड़कर रखा गया है। नाक कटने से सब समझ में आता है। अपनी नाक को कटने मत देना, गिरने मत देना।
नाक को ऊंचा रखना। बेटे, निसोर में प्राणोस्तु के अंतर्गत यह भी आता है,
दिव्यता का दर्शन करें।
इसके बाद आता है अश्नों में चक्षुरस्तु। हमारी आंखें दिव्य बने। दिव्यम ददामी ते चक्षु, अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे। अर्जुन ने तब इसी संसार में घट घटवासी भगवान को देखा था। दिव्य चक्षु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को दिए थे, उससे उन्होंने घट घट में समाये हुए भगवान को देखा। रामचंद्र जी ने अपनी माँ को दिए थे। कौशल्या माता ने भी भगवान के विराट रूप को देखा। भगवान राम ने काकभूषणी जी को दिव्य चक्षु दिए थे, जिससे उन्होंने सारे के सारे विश्व में भगवान को देखा।
हमारी वे आंखें जिंदा रहें और प्रत्येक चीज में सौंदर्य को देख सकें, श्रेष्ठ देख सकें, शालीनता को तलाश सकें और जो कुछ भी इस संसार में दिव्य है उस दिव्यता को देख सकने में सक्षम हो।
हम दिव्यता को तो देख नहीं पाते, केवल छिद्रान्वेषण कर पाते हैं। हमारी आंखें ऐसी गंदी हैं कि सिवाय बुराई के कुछ नहीं देख पाती। स्त्री के भीतर की देवी हमको दिखाई नहीं देती।
स्त्री के भीतर का शैतान हमको दिखाई पड़ता है, पाप हमको दिखाई पड़ता है, स्त्री का अनाचार हमको दिखाई पड़ता है,
स्त्री का देवत्व हमको दिखाई नहीं पड़ता, उसकी शालीनता हमको दिखाई नहीं पड़ती, उसका प्रेम हमको दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए बेटे, हमको चाहिए दिव्यम ददामि ते चक्षुः, जो दिव्यता को देख सके, जो दूरदर्शी हो, जो टेलीस्कोप के तरीके से हो। शंकर जी ने जिस दिव्य आंख को खोलकर कामदेव को जला दिया था, वह विचारशीलता की हमारी आंख, विवेकशीलता की हमारी आंख खुलनी चाहिए, जो अवांछनीयता को जला करके खाक कर सके और समाप्त कर सके।
कान व बाहों को जल का स्पर्श क्यों?
अगली क्रिया है कर्णियों में श्रोत्रमस्तु। कान हमारे ऐसे होने चाहिए जो रेडियो एक्टिविटी के तरीके से फिल्टर का काम कर सकें।
आपका जो रेडियो या ट्रांजिस्टर होता है उसमें एक फिल्टर लगा होता है, एक साथ उसमें बहुत सारी आवाजें आती हैं और एक साथ चलती हैं, सब हवा में पहुंचती हैं, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी की आवाज हमको पकड़नी है उसे पकड़ लेता है। उनमें वे भी ध्वनियां होती हैं जो मित्र और दोस्त हो सकती हैं, जिनको फ्रेंड कहते हैं। इनमें से केवल आप वही आवाज सुनिए जो आपको भगवान के और अपनी आत्मा के सम्मत सुनाई देती है।
कर्णियों में श्रोत्रमस्तु के बाद बाहों में बलमस्तु। बेटे,
हम अपनी भुजाओं को किस लिए स्पर्श करते हैं? हम इसलिए स्पर्श करते हैं कि हमारी भुजाएं हमेशा परिश्रमी बनी रहें,
श्रमशील बनी रहें, कर्तव्यप्रायण बनी रहें।
हमारे हाथ पसारने के लिए नहीं है। किसी के भी आगे हाथ न पसारना, भगवान के सामने भी मत पसारना, देवताओं के आगे भी मत पसारना, देवी के सामने भी मत पसारना और गुरुजी के सामने भी मत पसारना। ये हाथ इसके लिए नहीं है।
ये बड़े सौभाग्यशाली हाथ हैं। बेटे,
ये पसारने के लिए नहीं है, ये मांगने के लिए नहीं है, ये देने के लिए है, इसलिए देवत्व हमारे हाथ में भरा हुआ पड़ा है। हम लोगों की मदद करें, लोगों की सहायता करें, लोगों की सेवा करें और इन हाथों को धन्य बनाएं। हम मांगे नहीं, कर्ज नहीं उठाएं, लोगों का ऋण नहीं लें और अपने ऊपर वजन नहीं ला दें। इसकी जरूरत नहीं है कि हम अपने आप को गंवाएं।
इसलिए बेटे,
यह हाथ श्रम करने के लिए हैं, पुरुषार्थ करने के लिए हैं और देने के लिए हैं, इसलिए हम दोनों हाथों को बाहों में बलमस्तु करते हैं।
चरवेती से अनिष्ट निवारण तक। अब आता है उर्वो में ओजोस्तु। मित्रों,
हमारी ये जंघाएं संयमशीलता की ओर, ब्रह्मचर्यप्रायणता की ओर इशारा करती हैं।
गुरु माने जंघा,
यह इशारा करती हैं कि हमारी टांगों को चलने के लिए चिरवेती चिरवेती के लिए बनाया गया है।
लोगों चलते चले जाओ, रुको मत। प्रगति की ओर, उत्थान की ओर, शांति की ओर, महानता की ओर, गरिमा की ओर, भगवान की ओर चलते चले जाओ, रुको मत।
हम पैरों को ऐसा बना दें कि वे रुके नहीं, उठे और चलते रहें।
मित्रों, अंतिम है अरिष्टानी मैंगानी तनुस्तनवा में सहसंतु। हमारे भीतर जो अरिष्ट भरे हुए हैं,
जो संसार में डैख और कष्ट देने वाले अनिष्ट हैं, वे दूर हों।
अनिष्ट का अर्थ है मन, स्थिति और कष्ट का अर्थ है परिस्थिति।
ये अनिष्ट हमारे भौतिक जीवन में कष्ट बनकर के आते हैं। यह एक सत्य है कि जितनी भी मुसीबतें हैं उनको नियोत बुलाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हमने अपनी मुसीबतों को जानबूझकर मोल लिया हुआ है और हमने स्वयं विष के बीज बोए हैं। जब कांटे हमारे सामने आते हैं तो हम कहते हैं कि साहब, कांटे हमें कष्ट देते हैं।
बेटे,
बोए किसने हैं? स्वयं खुद ने बोए हैं, तो निराकरण भी स्वयं ही करना होगा।
मन स्थिति बदलने से परिस्थितियां बदल जाएंगी।
इसलिए अपने आप को भीतर बाहर से स्वच्छ, पवित्र और संयमी बनाते हुए हम देव पूजन के लिए, देवता बनने के लिए आगे बढ़ते हैं।
आज की बात समाप्त। ओम शांति शांति शांति।